यूएन रेडियो से साप्ताहिक समाचार परिक्रमा के साथ मैं हूं महबूब खान। 7 अगस्त 2020 के इस बुलेटिन की सुर्खियां। लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट से सैकड़ों लोग हताहत, यूएन एजेंसियां तेजी से लगी राहत कार्यों में। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति पर जताई गहरी चिंता। दास्ता, देह व्यापार और तस्करी सहित बाल मजदूरी के खराब रूपों से बच्चों की रक्षा करने वाली संधि हुई पारित। जापान के हिरोशिमा शहर में परमाणु बम हमले को हुए 75 साल, एक स्मृति समारोह आयोजित, प्रभावितों ने चुना उम्मीद और मेल मिलाप का रास्ता। और कोविड-19 पर अपडेट के साथ साथ होंगे कुछ अन्य समाचार भी। लेबनान के बेरूत शहर में भारी तबाही का सबब बनने वाले भीषण विस्फोट के बाद यूएन एजेंसियों का कहना है कि मौजूदा हालात में जरूरतों का दायरा और स्तर बहुत व्यापक हैं और तत्काल व्यापक सहायता उपलब्ध कराई जानी होगी। इस विस्फोट में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल व बेघर हुए हैं। राहत और बचाव अभियान के बीच हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
मंगलवार को हुए इस शक्तिशाली विस्फोट से बेरूत के कई इलाके बुरी तरह थरथरा उठे। इमारतें हिल गईं और घरों की खिड़कियां टूट गईं। लाखों लोगों के घर बर्बाद या क्षतिग्रस्त हुए हैं। बहुत से लोग अब भी लापता हैं और स्थानीय अस्पतालों को भारी दबाव में काम करना पड़ रहा है। अनेक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। यूएन राहत एजेंसियों का ध्यान मलबे में दबे लोगों की तलाश करने और घायलों का इलाज करने पर है। साथ ही प्रभावितों के लिए भोजन, शरण, दवाओं, मेडिकल उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। बेरूत में 2,500 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट के भीषण विस्फोट के बाद शहर की आबोहवा में हानिकारक कण घुल गए हैं, जिसके प्रति चिंता जताई गई है। इस घटना में कोविड-19 महामारी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए जुटाई गई मेडिकल बचाव सामग्री भी नष्ट हो गई है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। राहत अभियान को सहारा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 करोड़ की अपील जारी की है। इस बीच कोविड-19 संक्रमण के मामलों में उछाल आया है और गुरुवार को संक्रमण के 255 मामले दर्ज किए गए। लेबनान में कोविड-19 के अब तक 5,672 मामले दर्ज किए गए हैं और 70 लोगों की मौत हुई है। बेरूत बंदरगाह पर विस्फोट के कारण वहां अनाज के भंडार बर्बाद हो गए हैं। पहले से ही वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी से जूझ रहे देश में खाद्य सुरक्षा पर संकट की आशंका जताई गई है। जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम ने लेबनान में खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज और आटे का आयात करने की घोषणा की है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जम्मू कश्मीर में आम आबादी के मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रहने की स्थिति पर ध्यान देने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर यह पुकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के इन 17 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि तत्काल कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। अगर भारत सरकार स्थिति का कोई समाधान निकालने के लिए ईमानदारी से और तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अतीत और हाल के समय में हुए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच कराना और आगे लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन को रोकना भारत सरकार की जिम्मेदारियों में शामिल है। जम्मू कश्मीर को मुस्लिम बहुल राज्य होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। इन मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को जब से जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त किया है, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि हम विशेष रूप से इसलिए चिंतित हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान भी बहुत से ऐसे लोग हिरासत में बंद हैं जिन्हें प्रदर्शन करने के आरोप में बंदी बनाया गया था और इंटरनेट पाबंदियां भी लगी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने लगभग एक वर्ष पहले भी एक सार्वजनिक पत्र के जरिए भारत सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना व जानकारी हासिल करने और 5 अगस्त 2019 की घोषणा के बाद शुरू हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का दमन बंद करने का आग्रह किया था। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने लोगों को कथित तौर पर मनमाने तरीके से बंदी बनाए जाने, उन्हें प्रताड़ित किए जाने और उनके साथ खराब बर्ताव किए जाने पर अपनी चिंताओं से भारत सरकार को अवगत कराया था, जिस पर भारत सरकार ने हाल ही में अपना जवाब दाखिल किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि उन्हें अपने 4 पत्रों में से 3 पर भारत सरकार के जवाब का अब भी इंतजार है। दुनिया भर में कोविड 19 महामारी के संक्रमण के लगभग 1,85,00,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं और 7,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडेनोम गेब्रेसस ने तमाम देशों से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील फिर दोहराई है। कोविड 19 महामारी से जुड़ी खबरों पर सरसरी नजर के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेसस ने कहा है कि अमेरिका क्षेत्र कोविड 19 महामारी का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में स्थित अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, पेरू, चिली सहित अन्य देश कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने फिर दोहराया है कि इस वायरस से कोई देश अकेला नहीं लड़ सकता है और उसका अस्तित्व हर स्थान पर लोगों की जिंदगियों व आजीविकाओं के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि जब कोविड 19 महामारी की वैक्सीन बन जाएगी तो उसका न्याय संगत वितरण किया जाना भी जरूरी है।
वैक्सीन नेशनलिज्म इज नॉट गुड, इट विल नॉट हेल्प अस। व्हेन वी से इट शुड बी अ ग्लोबल पब्लिक गुड, इट्स नॉट शेयरिंग फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग।
महानिदेशक गेब्रेसस कह रहे थे कि वैक्सीन राष्ट्रवाद अच्छा नहीं है, इससे मदद नहीं मिलेगी। न्याय संगत वितरण को संभव बनाने के लिए जरूरी है कि वैक्सीन और किसी अन्य उत्पाद को एक वैश्विक उत्पाद बनाया जाए जो खुले बाजारों में आसानी से सभी के लिए उपलब्ध हो। विश्वव्यापी महामारी के कारण दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था के प्रभावित होने से चिंता उपजी है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इसके मद्देनजर इस सप्ताह अपना एक नया नीति पत्र जारी किया। संकट के दौरान पढ़ाई लिखाई को जारी करने के लिए प्रयास किए गए और पाठ्यक्रम को रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों तक पहुँचाया गया, लेकिन बहुत से छात्र इस दायरे से बाहर हैं।
संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सभी 187 सदस्य देशों ने दास्ता, देह व्यापार और तस्करी सहित बाल मजदूरी के खराब रूपों से बच्चों की रक्षा करने वाली संधि को पारित कर दिया है। प्रशांत क्षेत्र के एक द्वीपीय देश टोंगा ने मंगलवार को इस संधि पर अपनी मोहर लगा दी, क्योंकि दस्तखत करने के लिए वो आखिरी देश बचा था। यूनिवर्सल रेटिफिकेशन यानी सार्वभौम पुष्टि प्राप्त करने वाली ये संधि 2 दशक पहले पारित की गई थी और अतीत में इसे संधि संख्या 182 के नाम से जाना जाता रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए UN न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा ने भारत में ILO की राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी दिव्या वर्मा से बातचीत की और सबसे पहले यही पूछा कि इस संधि के पारित होने का क्या महत्व है।
तो पहला तो काम ये होगा कि इसके ऊपर प्रायोरिटाइजेशन होगी और इसके ऊपर अपने नेशनल लॉ, नेशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से जो कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर अपना प्रोग्राम तैयार करेंगे। दूसरी चीज ये आती है कि इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए उनको रेटिफिकेशन के बाद में जो भी तकनीकी सहायता है या जो भी उनको मदद चाहिए अपने प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए, अपने प्रोग्राम की कमियों को दूर करने के लिए, उसके लिए उनको और ज्यादा सहयोग हर तरीके का मिल सकता है।
बाल श्रम को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि कोविड 19 से लाखों बच्चों के बाल मजदूरी के गर्त में धकेले जाने का खतरा है, इसे लेकर क्या स्थिति है, खास तौर पर अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो?
कोविड 19 अगर आप देखें कि ये एक ऐसी महामारी आई दुनिया में जिसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। दुख की बात ये है कि ऐसा लगता है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से जो पहले से ही 152 मिलियन चाइल्ड लेबर में बच्चे थे और आधे की संख्या जो कि चाइल्ड जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर में थी, इन सारी वजहों की वजह से कि पॉवर्टी बढ़ने की आशंका है, सोशल प्रोटेक्शन कम होने की आशंका है, जॉब्स के खत्म होने की पूरी आशंका है, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि फैमिली कुछ इस तरीके से डिसीजन ले कि बच्चों को एक्स्ट्रा इनकम के लिए निकले या बच्चे जो ऑलरेडी चाइल्ड लेबर में काम कर रहे थे तो और लंबे समय के लिए या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क में उनको जाने की एक सिचुएशन बन सकती है।
तो ऐसे में ये संधि काफी अहम हो जाती है और इसके पारित होने के बाद क्या लगता है स्थिति में बदलाव लाने के लिए किस तरह का सहयोग मिलने की उम्मीद है?
बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इस संधि के पारित होने के बाद से अब चाइल्ड लेबर की जो मुद्दा है उसको प्रायोरिटाइज करने का और वो भी कोविड के समय में और भी ज्यादा जैसा कि मैंने कहा, कोविड के समय में जो एक आशंका हो रही है कि बाल श्रम के केसेस बढ़ सकते हैं या वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर के फॉर्म्स बढ़ सकते हैं, उसको अगर हमें चेक करना है या उसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन की बात करनी है, तो इस संधि का यूनिवर्सल रेटिफिकेशन एक बहुत ही समय से हुआ माना जा सकता है। एक बात और कहना चाहूंगी कि रेटिफिकेशन का ये मतलब नहीं हुआ कि ये कन्वेंशन सब जगह इम्प्लीमेंट भी उतनी ही रिगर से हो रहा है या हो जाएगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए काम इसी तरीके से होगा कि हर कंट्री में, हर जगह गवर्नमेंट, नियोक्ता, यूनियन, ये सब साथ में मिले, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक साथ में मिले, और खास करके जो हमको एक सोशल अप्रोच होना चाहिए, एक कम्युनिटी अप्रोच होना चाहिए, ये अक्रॉस सोसाइटी अप्रोच एक होनी चाहिए जिसमें कि चाइल्ड लेबर और वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर को एकदम ही नकारा जाए, एकदम ही खत्म किया जाए।
75 वर्ष पहले 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर में परमाणु बम हमले में जानमाल की भारी तबाही हुई थी, जिससे प्रभावित हुए लोगों की स्मृति में गुरुवार को जापान में एक शांति समारोह आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस समारोह में पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महासचिव ने इस अवसर पर आगाह करने के अंदाज में कहा कि परमाणु शस्त्रों से सुरक्षा मजबूत नहीं बल्कि और भी कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि जानमाल की व्यापक हानि होने के बावजूद स्थानीय लोगों ने उम्मीद और आपसी मेल मिलाप के मार्ग पर आगे बढ़ने का रास्ता ही सही समझा है। यूएन प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि 75 वर्ष पहले सिर्फ परमाणु हथियार की वजह से इस शहर को अकथनीय मौत व तबाही का मंजर देखना पड़ा था, उसके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि हिरोशिमा और वहां की जनता ने इस आपदा से खुद को परिभाषित नहीं करने का चयन किया है, इसके बजाय वे सहन क्षमता, पारस्परिक मेल मिलाप और आशा का प्रदर्शन करते रहे हैं। परमाणु हमले में बच गए लोगों को हिबा कुशा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें यूएन प्रमुख ने परमाणु निरस्त्रीकरण के अतुलनीय पैरोकार करार दिया है। उन्होंने अपनी त्रासदी को संपूर्ण मानवता की सुरक्षा व कल्याण के लिए पुरजोर आवाज में तब्दील कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराने से COVID-19 संक्रमण होने का खतरा ना के बराबर है और इस प्रकार का कोई भी मामला अब तक दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने स्तनपान को बढ़ावा देने और जरूरी समर्थन जुटाने की पुकार लगाई है। संगठन की ओर से यह अपील विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जारी की गई, जिसमें आगाह भी किया गया कि माँ का दूध न मिल पाने की वजह से हर वर्ष 8,20,000 बच्चों की मौत हो जाती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को $300 अरब तक का नुकसान होता है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन एजेंसी में स्वास्थ्य प्रणाली इकाई में भोजन एवं पोषण कार्रवाई की प्रमुख डॉक्टर लॉरेंस क्रमरस्ट्रॉन ने बताया कि WHO ने अपनी सिफारिशों में पूरी तरह स्पष्ट ढंग से कहा है कि स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए। दुनिया में कहीं भी माँ के दूध से COVID-19 के संचारण होने का कोई मामला नहीं देखा गया है। यूएन एजेंसी के मुताबिक जन्म के बाद शुरुआती 6 महीनों में सिर्फ स्तनपान से ही बच्चों का पोषण सुनिश्चित किया जा सकता है और इससे माँ व शिशु को बहुत से फायदे हैं। मसलन, इससे बच्चों को बचपन में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जीवनदायी रोग प्रतिरोधी क्षमता के तत्व मिलते हैं और ये लाभ COVID-19 महामारी के दौरान पनपी आशंकाओं व जोखिम से कहीं ज्यादा है। डॉक्टर ग्रमरस्ट्रॉन ने बताया कि विश्व भर में बहुत से अध्ययनों में अनेक महिलाओं के दूध का परीक्षण किया गया है। कुछ नमूनों में वायरस जरूर था, लेकिन जब उसकी संक्रामकता का परीक्षण किया गया तो मालूम हुआ कि वह कोई वास्तविक संक्रमण का वाहक वायरस नहीं था।
हम आपको याद दिलाते चलें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करके भी आप ताज़ा समाचार खुद ब खुद हासिल कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।